आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार विशाली जैन के साथ। आज की बड़ी खबर में ऑस्ट्रेलिया में बेबी रिसेशन आ गया है, यानी जन्म की दर घटती जा रही है, जिसकी वजह बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग के दबावों और आर्थिक अनिश्चितता को बताया जा रहा है। KPMG के हवाले से आई एक रिपोर्ट दर्शाती है कि बीते वर्ष में देश भर में दर्ज हुए जन्म के आंकड़े 2006 से अब तक के सबसे कम रहे। देश भर में बीते वर्ष में कुल 2,89,000 जन्म दर्ज किए गए हैं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी CBD और एन शहर में रहने वाली जनसंख्या में जन्म दर सबसे तेजी से कम होती पाई गई है। सिडनी में जन्म दर 8.6% से घटी, जबकि ये आंकड़ा मेलबर्न के लिए 7.3% रहा। तस्मानिया अकेला ऐसा प्रदेश रहा जहां इस आंकड़े में बढ़त देखी गई। वित्त मंत्री कैटी गैलेगर का कहना है कि उनकी सरकार लगातार बच्चों वाले परिवारों का समर्थन करने में जुटी हुई है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आए नए आंकड़े सुझाते हैं कि देश में अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर जनसंख्या अब 10 लाख के पार हो गई है। नए आंकड़ों के अनुसार बीते 3 साल में प्रथम राष्ट्र जनसंख्या 56,000 से बढ़ी है। एजेंसी का मानना है कि 2031 तक अबोरिजिनल लोगों की संख्या 12 लाख से अधिक होगी। ये आंकड़े जन्म की दर, लोगों में माता पिता बनने की इच्छा, जीवन दर और प्रवासन के आधार पर गणे जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रथम राष्ट्र जनसंख्या सबसे तेजी से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रही है। वहीं विपक्ष ने ऑस्ट्रेलिया की एक शीर्ष इंजीनियरिंग एकेडमी की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जहां कहा गया है कि छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर 2040 के दशक तक भी बाजार के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेज एंड इंजीनियरिंग की इस पड़ताल के बाद गठबंधन की 2035 तक देश में 7 परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना पर शंका के बादल पड़ गए हैं। इससे पहले CSIRO और ऑस्ट्रेलियन एनर्जी मार्केट रेगुलेटर ने पाया था कि बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा के उत्पाद के लिए बाजार को तैयार होने में कम से कम 15 साल लगेंगे। फिर भी विपक्ष नेता पीटर डटन को अपनी योजना पर पूरा भरोसा है। अन्य खबर में, आने वाले 4 सालों में ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक ढांचे की समीक्षा के सुझावों को लागू करने के लिए $100 मिलियन का खर्चा किया जाएगा। 12 महीने में की गई इस समीक्षा में सैकड़ों लोगों और समुदायों की सुनवाई हुई, जिसके बाद 29 सुझाव प्रेषित किए गए थे। डॉक्टर हैज डेलाहल इस समीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं और कहते हैं कि इस रिपोर्ट ने सरकार के लिए नए मानक तय किए हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राजनेता बर्नी सैंडर्स का कहना है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए न्योता दिया ही नहीं जाना चाहिए था। वर्मोंट के इन सेनेटर ने इजरायली प्रधानमंत्री को युद्ध अपराधी बताया। वे और दूसरे डेमोक्रेट नेता बुधवार को होने वाले नेतन्याहू के संबोधन का बहिष्कार करने का मन बना चुके हैं। वहीं 250 से अधिक पैलेस्टाइन समर्थक ज्यू प्रदर्शनकारियों को कैपिटल हिल की रोटंडा बिल्डिंग से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी मांग थी कि अमेरिका इजराइल को समर्थन देना बंद करे और ये प्रदर्शन राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री की बैठक के समय पर किया गया था। और अंत में खबरें भारत से। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में हाल के लोकसभा चुनाव की स्पष्ट छाप दिखी। इस चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही थी, जिसके बाद उन्हें सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा था। नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न देकर बजट का बड़ा हिस्सा दिया गया। सेलफोन और चार्जर, कैंसर की दवाओं, समुद्री भोजन, चमड़ा और सोने पर सीमा शुल्क में कटौती के साथ अन्य क्षेत्रों में भी कुछ राहत दी गई। कई सालों के बाद सरकार ने पहली बार तंबाकू पर टैक्स नहीं बढ़ाया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस पहले बजट को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष ने बजट को चुनावी बताते हुए विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया है। 23 जुलाई को प्रेषित किए गए इस बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के दल आज संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ 24 जुलाई 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धीरे वृशाली को इजाजत, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।